ये कार्यक्रम माध्यमिक स्तर का कार्यक्रम है, विषय ग्रह विज्ञान है, और इसमें हमारा जो चौथा पाठ है वो है भोजन पकाने की विधियाँ। जी हाँ, बड़ा ही दिलचस्प विषय है आज का हमारा। भोजन हर एक कोई खाता है, हमारी मूलभूत आवश्यकता है, भोजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, और सभी भोजन पकाकर खाते हैं, कच्चा तो शायद ही कोई खाता होगा। पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कभी आपने सोचा है कि भोजन पकाना कैसे शुरू हुआ? जो हमारे आदि मानव थे वो क्या खाते थे? वो तो भोजन पका के नहीं खाते थे, वो तो कच्चा भोजन खाते थे। तो भोजन पकाना कैसे शुरू हुआ? एक बहुत दिलचस्प कहानी है, वाक्या है जो हमने पढ़ा है कि भोजन कैसे पकाना शुरू हुआ। वो कहता है कि एक बार जो है आदि मानव बैठ के भोजन कर रहे थे, तो कच्चे मांस का एक टुकड़ा जो है गलती से आग में गिर गया, और आग में गिर करके वो भुन गया। तो जब उसको निकाला आग में से और किसी ने उसे अगेन गलती से खा कर देख लिया, तो उसे बड़ा मज़ा आया। अरे, बड़े चटकारे लेके खाया, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट हो गया। जो कच्चा मांस खाते थे वो तो बिल्कुल बेकार लगता था, और ये तो भुनने के बाद में इसका तो स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो शायद वहाँ से भोजन पकाने की प्रक्रिया जो थी वो प्रारंभ हुई। तो लोगों ने ये देखा कि अगर हम आग के ऊपर रख करके भोजन पका लेते हैं, या आग में रख करके भोजन पका लेते हैं, तो उसका स्वाद बदल जाता है, और वहाँ से शुरुआत हुई। तो जैसे आप जानते हैं कि मनुष्य जो है बहुत ही आविष्कारी होता है, तो एक तरीका उसको मिला भोजन को पकाने का, उसने फिर कुछ और उसमें इजाद किया, और इस तरह से विकास होते होते आज हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी विधियां हैं भोजन पकाने की। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले मैं ये चाहूंगी कि आप ये सोचें कि हम इस विषय पर चर्चा कर ही क्यों रहे हैं। भोजन पकाना एक आम बात है, एक आम प्रक्रिया है, हर घर में होती है, हर मानव करता है, तो हम इसके बारे में पढ़ें क्यों? देखिए, गृह विज्ञान में कोई भी विषय जब हम लेते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य यह है इस विषय को पढ़ने का, भोजन पकाने की विधियाँ, इसको पढ़ने का उद्देश्य यह है कि आप पहले तो चिन्हित करें कि भोजन पकाने की कौन सी विधियाँ होती हैं, विधिवत इसको आप चिन्हित कर पाएं कि ये एक दो तीन विधियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद में आप, ठीक है, अगर ज्ञान मिल गया तो क्या करेंगे? जब आपको इसका ज्ञान हो जाएगा कि ये विधियाँ होती हैं, इसमें के हर हर विधि को प्रयोग करने के कौन से लाभ हैं, कौन से नुकसान हैं, नफा नुकसान जब आप समझेंगे, उसके बाद में आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप अपने घर में अपने भोजन पकाने के तौर तरीकों का आप जो है जरा सा ध्यान दीजिए और मूल्यांकन करिए, इवैल्यूएशन करिए कि आप कौन सी विधि को अपना रहे हैं, वो क्या आपके लिए लाभदायक है या आपको नुकसान हो रहा है उस विधि से भोजन पकाने का। ये तो रहा कि अपने ज्ञान को आपने अपने घर में और अपने भोजन पकाने की विधियों को सुधारने में या बेहतर बनाने में प्रयोग किया। उसके आगे गृह विज्ञान में क्या अपेक्षा है आपसे कि जब आपने अपने आप को देख लिया, मूल्यांकन कर लिया, सुधार लिया, तो आप अपना दायरा थोड़ा बड़ा करें और समाज में अन्य लोगों के साथ, अन्य परिवारों के साथ जब आपका मिलना जुलना होता है, तो उन्हें भी आप प्रेरित करें कि जो भोजन पकाने की लाभदायक विधियां हैं उन्हें वो अपनाएं, और जो विधियां वो अपना रहे हैं जिनसे भोजन में जो पोषक तत्व हैं उनका हनन हो रहा है, उनका नाश हो रहा है अज्ञानतावश, उन तरीकों को वो बदलें और अपना जो उनका भोजन पकाने का तरीका है उसको वो बेहतर बनाएं। तो ये तीन मुख्य उद्देश्य हुए आपसे आज भोजन पकाने की विधियों के बारे में चर्चा करने के, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि भोजन जब हम पका के खाते हैं तो उसका क्या लाभ होता है। बार बार मैं कह रही हूँ कि ये आम प्रक्रिया है, आप और हम दोनों जो हैं भोजन पका के खाते हैं, पर क्यों? आखिर क्यों पकाते हैं हम भोजन, इसके क्या कारण हैं? तो सबसे पहला कारण तो ये है कि ये सुपाच्य हो जाता है। भोजन जब पक जाता है, खाद्य पदार्थ जब आप पका लेते हैं, तो वो सुपाच्य या डाइजेस्टिबल हो जाता है। यानी आप मानिए, अगर आप कच्चे गेहूं चबाने लगे तो क्या पचेगा? नहीं। लेकिन जब आप उसका उसकी रोटी उसको उसको पीस करके आटा बना के उसकी रोटी बनाते हैं, तो वो सुपाच्य हो जाता है। इस तरह से और बहुत सारे, हर खाद्य पदार्थ का यही है। जब आप कच्चा खाते हैं तो पचाना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप उसे पका लेते हैं तो आप आसानी से उसे पका लेते हैं। अच्छा, और क्या होता है खाना पकाने के बाद में, भोजन पकाने के बाद में? देखिए, उसका रंग बदल जाता है, उसका टेक्सचर बदल जाता है। यानी वो अगर कड़ा है तो वो मुलायम हो जाता है। आप किसी चीज़ को पका करके कड़ा भी कर सकते हैं। अब जैसे लीजिए, एक आलू ले लीजिए। आलू को जब आप उबाल लेते हैं, कच्चा होता है तो वो कड़ा होता है, जब आप उसे उबाल लेते हैं तो वो बिल्कुल मुलायम हो जाता है, जब उसे तल लेते हैं तो बिल्कुल क्रिस्प हो जाता है, कड़ा हो जाता है। तो आप जैसा चाहें उस तरह का भोजन आप बना सकते हैं। भोजन पकाने के बाद उसकी जो स्मेल होती है, जो गंध होती है, वो इतनी बढ़िया हो जाती है कि आह, दूर से भी कहीं से आ जाए तो आपका आपके मुंह में पानी आ जाता है ना। और जब आप उसे परोसते हैं बहुत आकर्षक ढंग से, कहीं थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल करके, या किसी को आप ग्रेवी बहुत अच्छी लाल बना देते हैं, तो देख कर ही मुँह में पानी आता है। तो ये सब जो बदलाव आता है खाने में, ये पकाने की वजह से होता है। और आपको अपने आप जो है भोजन खाने का मन करने लगता है। और क्या करते हैं, भोजन जब पकाते हैं तो उसमें बहुत वैरायटी आप क्रिएट कर सकते हैं। यानी अगर आप लीजिए, गेहूं का एग्जांपल लेते हैं, अभी मैंने बात की, तो गेहूं को जब आपने पीस लिया तो उसका आटा बन गया, ठीक है। आटे का आप क्या बनाते हैं? आप रोटी बना सकते हैं, आप पराठा बना सकते हैं, आप पूड़ी बना सकते हैं, आप कचौड़ी बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं, मटरी बना सकते हैं, अरे क्या क्या नहीं बना सकते हैं। तो भोजन में जो विविधता होती है ना, वो आप पकाने की प्रक्रिया से ला सकते हैं। दूध ले लीजिए, आप दूध वैसे ही पी सकते हैं, उसका दही बना सकते हैं, आप उसका कस्टर्ड बना सकते हैं, आप उसका पनीर बना सकते हैं, क्या क्या नहीं बना सकते हैं, ये आपकी इमेजिनेशन पर है कि आप कितनी ज़्यादा विविधता जो है पकाने के बाद अपने भोजन में ला सकते हैं। ये तो खाने की बातें हो गई, लेकिन जगह अगर आपको जो है भोजन रखना पड़े, कोई आपको खाद्य पदार्थ है जो आपको रखना पड़े, तो भी जो है अगर आप उसे कच्चा रखते हैं तो वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसमें कीटाणु आ जाते हैं। लेकिन अगर उसे पका दें तो आप लंबे समय तक उसे रख सकते हैं। फिर से देखते हैं, अगर आटा आपने गूंद करके रख दिया, ठीक है, आपने आटा ज़्यादा गूंद लिया और वो आपकी उतनी जो है रोटियां नहीं बनी, या आपने उतना उसको यूज़ नहीं किया तो बच गया। अब अगर आप इस आटे को ऐसे रख देंगे तो वो 1 या 2 दिन में निश्चित रूप से ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी रोटी या पराठा बना के रख देते हैं तो वो ज़्यादा समय तक टिका रहेगा और खाने योग्य रहेगा। तो इस तरह से भोजन पका देने से वो लंबे समय तक रहता है, और कई बार जो है आप उसे लंबे समय तक वैसे ही सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे आपने दूध का अगर दही बना दिया तो वो जो है बहुत लंबे समय तक आपके लिए उपलब्ध रहेगा। तो भोजन पकाने के क्या लाभ होते हैं, यह आपने देख लिया। यानी भोजन पकाना आवश्यक ही नहीं है, भोजन पकाना आपके लिए बहुत लाभदायक भी है। अब विधियाँ क्या क्या होती हैं? आमतौर पर हम क्या करते हैं, हम जब खाना पकाते हैं तो या तो हम नमी के साथ उसको पकाते हैं, यानी हम पानी का प्रयोग करते हैं उसको पकाने के लिए, या हम उसे बिल्कुल सूखा पकाते हैं। दो तरीके हुए। और तीसरा तरीका क्या होता है, हम तेल का प्रयोग करते हैं, घी या तेल का हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें भी अब तीन विधियाँ, मूल रूप से तीन विधियाँ होती हैं। एक तो होता है नमी के साथ पकाना, दूसरा शुष्क विधि द्वारा पकाना या सूखा उसको पकाना, और तीसरा होता है तलकर या घी या तेल के साथ में उसको पकाना। तो ये तीन जो विधियाँ होती हैं, इनके बारे में अब हम विषय विस्तार से हम बात करते हैं। तो पहला जो है नमी का प्रयोग करके हम इस जब पकाते हैं, तो सबसे ऑब्वियस मेथड क्या आता है आपके दिमाग में जब आप सोचते हैं कि नमी लेकर के आपने या पानी लेकर के आपने कोई चीज़ पकाई है? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, उसे उबालना कहते हैं। जब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम पानी लेते हैं और उसमें हम अपना खाद्य पदार्थ बीच में रख करके जब उसको हम पकाते हैं तो उसे उबालना कहते हैं। एग्जाम्पल्स आप दीजिए। बिल्कुल सही, अंडा उबालते हैं, आलू उबालते हैं, अरवी उबालते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उबालते हैं। लेकिन जब उबालते हैं तो कुछ चीज़ों को आप कुछ बातों का ध्यान जरूर आपको देना चाहिए। एक तो ये है कि देखिए, कोई भी अगर कंदमूल है उसे उबाल रहे हैं तो उसमें मिट्टी लगी होगी, तो उबालने से पहले उसे बहुत अच्छी तरह से आप धो लीजिए, सारी मिट्टी साफ़ कर लीजिए। नहीं तो क्या होता है, कई बार उबालते उबालते जो छिलका होता है वो फट जाता है या टूट जाता है। तो अगर मिट्टी होगी तो वो मिट्टी उस खाद्य पदार्थ के अंदर आ जाएगी और आपको किरकिरापन महसूस होगा जब आप उसे खाएंगे। और पानी आप कितना लें, ना बहुत ज़्यादा लें ना बहुत कम लें, उतना पानी लें कि आपका जो फूड प्रोडक्ट है वो पूरी तरह से उसमें डूब जाए। ठीक है। अच्छा, और क्या आप कर सकते हैं, आप हमेशा जब उबालते हैं ढक करके उबालें। कोई भी जो आपने बर्तन यूज़ किया है, पतीला यूज़ किया है या आप जिसमें भी उबाल रहे हैं, उसको आप ढक्कन जो है लगा करके रखें। इससे क्या होता है, भाप जितनी भी बनती है वो उसी में रहती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ये अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो ईंधन है वो भी कम लग रहा है, यानी आपकी गैस की बचत भी होगी। और कब तक उबालें, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि भोजन को कब तक उबालें आप। तो तब तक ही उबालें जितने की आपको आवश्यकता है। कई बार देखिए कुछ रेसिपीज़ होती हैं उसमें कहते हैं कि आलू आप उबला हुआ लीजिए, लेकिन वो जस्ट गला हुआ होना चाहिए, ज़्यादा उबला नहीं होना चाहिए। या कभी आप कटलेट्स जब बनाते हैं या आलू के पराठे जब आप बनाते हैं, उसके लिए जब आपको आलू चाहिए तो आपको बहुत अच्छी तरह से गला हुआ आलू चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल उसको मैश करके और तब उसका प्रयोग करते हैं। तो जिस तरह का आपको एंड प्रोडक्ट चाहिए उतना ही आप जो है उसको उबालिए। उसके बाद में क्या करते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि हमने जैसे कुकर में आलू उबाला तो हम फट से सीटी ऊपर कर देते हैं और भाप निकाल देते हैं क्योंकि हमें जल्दी होती है। लेकिन ये भी आप ध्यान रखें कि ये नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए जो है हानिकारक हो सकता है। अच्छा, और एक बात आप ध्यान रख सकते हैं कि जहाँ तक आप अपने प्रोडक्ट्स को उबाल रहे हैं, खाने को उबाल रहे हैं, तो जितना हो सके जो उसका छिलका होता है उसके साथ ही आप उबालें। यानी कुछ लोगों को मैंने देखा है आलू उबालते हैं तो आलू छील करके उबालते हैं, तो ये जो है क्या होता है कि जब आप छिलका हटा देते हो उसके साथ जो उसमें पोषक तत्व होते हैं छिलके के ऊपर, वो आपने सब हटा दिए। लेकिन अगर आलू को आपने छिलके सहित उबाला है तो उस आलू के छिलके में जितने पोषक तत्व हैं वो उबलते समय आलू के अंदर आ जाते हैं, तो आपको उसका भी लाभ मिल जाता है। ठीक है। अब ये तो हुआ कि आपने जब आलू या कोई भी आपने सब्जी उबाली तो उसमें आपको फ़ायदा क्या हुआ कि वो बहुत नरम हो जाता है, मुलायम हो जाता है, अच्छे से आप उसको खा सकते हैं। और अगर किसी को चबाने में कोई प्रॉब्लम है तो वो बहुत आराम से उबला हुआ खाना खा सकता है और डाइजेस्टिबल हो जाता है, बहुत आसानी से उसको आप पचा सकते हैं। लेकिन इसमें नुकसान भी कुछ होता है। नुकसान कैसे होता है कि जो पानी है जिसमें आपने अपने भोजन को उबाला है उसमें, जैसे आलू का मैंने एक एग्जाम्पल लिया, तो जो वाटर सोल्यूबल वाइटमिन्स होते हैं वो उस उबलते पानी में आकर निकल आते हैं। ठीक है। तो वो पानी में सारे वाइटमिन्स आ गए, अगर आप इस पानी को फेंक देते हैं तो वो सारे विटामिन्स नष्ट हो गए। जैसे कि मानिए आपने पालक के पत्ते उबाले और पालक के पत्ते उबालने के बाद में जो पानी बचा वो आपने फेंक दिया, तो जितने पोषक तत्व पालक में से निकल के पानी में आ गए थे उसको तो आपने बहा दिया। आपके पास क्या बचा, आपके पास केवल फाइबर बचा, कुछ नहीं बचा उसमें। तो इसलिए ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप बिल्कुल साफ करके सब्जी को तब उबालें, और वो उबला हुआ जो पानी है जो बचा है उसको आप किसी और चीज़ को बनाने में आप प्रयोग करें। जैसे कि आटा गूंदने में आप उसको प्रयोग कर सकते हैं, या अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो उस सब्जी में जो आप रसा डालते हैं, पानी डालते हैं, उसकी जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सूप बना रहे हैं तो उस सूप में इस पानी को यूज़ कर सकते हैं। तो इस पानी को अगर आप नष्ट ना होने दें तो आपको कोई आपके खाने का कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है। एक तो विधि ये हुई, दूसरा विधि क्या होता है, ये तो आपने उबाला खाने को बहुत सारे पानी के साथ में, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप जो है अपने भोजन को बहुत धीमी आंच पर थोड़े लंबे समय तक पकाते हैं। है ना, ये कब करते हैं, इसको हम कहते हैं सिमरिंग या खदकाना भी हम इसको हिंदी में कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट तक तो हम ले आते हैं इसको, अपने खाने को बॉइलिंग पॉइंट तक लाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद टेम्परेचर कम करके उसको बहुत ही धीमी आंच पर पकने देते हैं। ठीक है, तो ये कब करते हैं, ये हम तब करते हैं जब या तो हमें नॉन वेजिटेरियन फूड बनाना हो, या सब्जियों को हमें बहुत मंदी आंच पे हमें पकाना हो, जैसे सूखी सब्जी जब आप बनाते हैं है ना, तो उसको भी हम कई बार स्टीम करके या इस तरह से कम पानी में पका करके खाते हैं। या आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनको अगर हम कोई भोजन खिलाते हैं, ये 6 से 8 महीने या 1 साल के बीच में का जो एज होती है बच्चों की, उसमें जब हम बच्चों को खाना खिलाते हैं तो कई बार सेब जो होता है, सेब की फांके हम बहुत कम पानी में धीमी आंच पर पकाते हैं कि वो सॉफ्ट हो जाए, मुलायम हो जाए, और फिर उसको मैश करके हम बच्चे को आराम से खिला सकते हैं। तो इस तरह के भोजन जब हम पकाते हैं तो वो भी हम कम पानी में और बिल्कुल धीमी आंच पर खदका कर पकाते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम पानी का प्रयोग कहाँ करते हैं, हम करते हैं जब हम भाप द्वारा पकाते हैं। भाप द्वारा कौन से हम खाने या भोजन को पकाते हैं, बिल्कुल सही आपने पकड़ा है, ढोकला बनाते हैं, इडली बनाते हैं, इस तरह के जब हम भोजन बनाते हैं, या अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो पतौड़ एक चीज़ बनाई जाती है जिसमें अरवी के पत्तों को बेसन में लपेट करके बनाया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें जो है घर में हम ऐसे बनाते हैं जिसमें हम भोजन को एक स्टीमर के ऊपर रख देते हैं, एक छलनी नुमा बर्तन होता है जिसमें छेद होते हैं, उसको हम खौलते हुए पानी के ऊपर रख देते हैं। तो क्या होता है कि खौलते हुए पानी में से जो भाप निकलती है, उस भाप की गर्मी से, हीट से जो हमने खाना रखा है वो पक जाता है। अगर आप कोस्टल एरियाज में रहते हैं तो वहाँ पर फिश या मछली को स्टीम करके खाते हैं लोग, और ये भी बहुत हेल्दी मेथड है भोजन पकाने का, क्योंकि इसको ना तो आप डायरेक्ट पानी में पका रहे हैं, ना हम इसको आंच पर पका रहे हैं, केवल जो भाप की गर्मी है उस गर्मी से ही हम भोजन को पका रहे हैं। तो ये एक विधि हुई जिसमें आप पानी का प्रयोग करते हैं। और इन सब में जो है, आप प्रेशर कुकिंग का जब प्रयोग करते हैं, यानी प्रेशर कुकर में आप जो भी खाना पकाते हैं उसमें पानी का प्रयोग ज़रूर करते हैं, चाहे कम मात्रा में करें। जैसे कि अभी अगर कोई सूखी सब्जी बनाते हैं तो उसमें बहुत कम पानी डालते हैं और प्रेशर लगा देते हैं, या उबालने के लिए आप थोड़ा ज़्यादा पानी का प्रयोग करते हैं और प्रेशर लगा करके उसको पका लेते हैं। तो प्रेशर कुकर का जब आप प्रयोग करते हैं तो उसके क्या लाभ होते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, उसमें जो लाभ होते हैं, एक तो खाना बहुत जल्दी पक जाता है, आपके गैस की बचत होती है, आपके जो पोषक तत्व होते हैं उसमें भोजन में वो बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, जो खाने का स्वाद होता है वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है। तो प्रेशर कुकर का प्रयोग करें, अपने घर में ईंधन बचाएं, समय बचाएं और स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाएं। अब आते हैं हम दूसरी विधि पर, जो है शुष्क विधि, यानी शुष्क ताप द्वारा जब आप अपने भोजन को पकाते हैं तो उसको आप विभिन्न तरीकों से इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बेकिंग करना होता है। एक अवन में जब आप भोजन रख करके पकाते हैं, जैसे आपने अगर ब्रेड या केक बनाया है तो उसको आप शुष्क ताप से ही पकाते हैं, उसमें पानी का कहीं प्रयोग नहीं होता है। अवन में केवल जो एलिमेंट है उससे हीट आती है, और उस हीट से जो है आपका भोजन पक जाता है। और आप एक तरीका यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं भूनना। हाँ जी, चने हम भुने हुए खाते हैं, मूंगफली हम भुनी हुई खाते हैं, बैगन का भरता हम उसे भून कर बनाते हैं। तो ये जो विधि है जिसमें हम सीधी आंच पर भोजन को रख करके उसको भूनते हैं, ये भी भूनने की एक विधि है जो शुष्क आंच पर या शुष्क तापमान पर इसको हम प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसमें फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि एक तो स्वाद बढ़ जाता है, आपको बहुत ही करारा भोजन मिल जाता है, यानी मूंगफली जब आप भून के खाते हैं तो बिल्कुल करारी हो जाती है। आहा, सर्दियों में करारी गर्म मूंगफली खाने का मज़ा ही कुछ और है। जब चने आप भून के खाते हैं तो उसका स्वाद बहुत बढ़िया हो जाता है। भरते का मैंने नाम लिया, जब आप बैगन को भून के भरता बनाते हैं तो उसमें जो भुने हुए बैगन की जो गंध आती है उसका अलग ही स्वाद हो जाता है। लेकिन इसका डाउनसाइड क्या होता है, इसका एक हानि कह सकते हैं कि कई बार क्या है कि भूनते भूनते बहुत सूख जाता है जो प्रोडक्ट होता है, और इसलिए जब हम उसे खाते हैं तो बहुत हमें ड्राई लगता है खाने में, गले में चिपकता है। तो उसके साथ में बहुत आसान सा इलाज है, चटनी ले लीजिए या सॉस ले लीजिए, वो भी बहुत बढ़िया आपको स्वाद देता है। और एक तरीका क्या होता है, जब आप कोयले के ऊपर या गैस के ऊपर में डायरेक्टली सेकते हैं, जैसे हम जिसको हम इंग्लिश में ग्रिलिंग कहते हैं, इसको आंच पर सेकते हैं, तो जैसे हम कभी कबाब बनाते हैं या कोई और, आप देखें कि बाटी बिहार में या राजस्थान में इसको इसी तरह से जो है कहते हैं, तो जब हम ये चीज़ें बिल्कुल आग पे डायरेक्टली रखकर बनाते हैं उसको हम ग्रिलिंग कहते हैं। तो ये भी शुष्क आंच पर पकाने की एक विधि है, इसका भी आनंद आप अलग तरीके से ले सकते हैं। तो तीन तरह की बातें मैंने की हैं जब मैंने शुष्क ताप द्वारा पकाने की बात की है। तो एक तो मैंने बात की है कि आप बेक कर सकते हैं, भून सकते हैं अपने खाने को, या उसकी ग्रिलिंग कर सकते हैं। अब आते हैं जो सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बनाता है, वो है तलना। तला हुआ खाना किसे नहीं पसंद है, हर एक किसी को पसंद है, लेकिन आज आप किसी से भी कहें कि वेट बढ़ रहा है, तला भुना खाना नहीं खाना चाहिए, कहने को तो सब कहते हैं लेकिन स्वाद तो
स्वाद
उसी में
उसी में
आता है।
आता है मैम,
बिल्कुल
बिल्कुल
आपने
सही
सही
बात
कहा
है
कि स्वादिष्ट खाना जो है
जी
तलने से ही हमें मिलता है और
जी
सबसे ज़्यादा हमें पसंद आता है। तो हम पकौड़ी की बात करें या पोटैटो चिप्स की बात करें या वेफर्स की बात करें, तो हर चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती है। लेकिन इसमें भी दो तीन तरीके होते हैं तलने के। एक तो होता है भरे घी में आग तले, जिसको डीप फ्राइंग कहते हैं, जैसे कि आपने पकौड़ी बनाए या चिप्स बनाए। एक होता है कम तेल में तलना, जिसमें आप पैन पर या तवे पर बहुत थोड़ा सा आप तेल डालते हैं या घी डालते हैं और उससे आप तल लेते हैं। जैसे कि अगर आप ऑमलेट बनाते हैं, अंडों का ऑमलेट बनाए, तो बहुत थोड़ा सा आपने घी लगाया, या अगर आप कटलेट्स बनाते हैं तो वो भी आप आजकल कम तेल लगा करके और उसको आप कर सकते हैं। तो तलने में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कुछ सावधानियां हैं। एक तो यह है कि जो आप तल रहे हैं उसको जब आप काट रहे हैं, यानी जैसे आलू अगर काट रहे हैं या कोई भी चीज़ आप तल रहे हैं, तो उसको आप समान आकार के टुकड़ों में काटिए। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब भरे घी में हम उसकी कुकिंग करते हैं तो अगर कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा तो एक ही घान में जब आप उसे निकालेंगे तो छोटे वाले टुकड़े तो आपके जल्दी पक जाएंगे, लेकिन बड़े वाले टुकड़े जो हैं वो पूरी तरह से पक नहीं जा पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप तेल में तलते हैं तो उसका तापमान बिल्कुल सही होना चाहिए। ज़्यादा तेज़ गर्म होगा तो उसमें खाना डालते ही वो जल जाएगा, या अगर कम गर्म होगा तो वो पकने में बहुत ज़्यादा देर लगाएगा। और जाहिर सी बात है कि जब आप तल रहे हैं तो कढ़ाई में बहुत ज़्यादा जो है आप सामान ना डालें, उससे भी कुकिंग जो है ठीक से नहीं होती है। और अपना अगर सेहत का आपको बहुत ख्याल है तो तलने के बाद भी जो आप कढ़ाई में से निकाल रहे हैं, चिप्स हैं या पकौड़े हैं, उसको आप किचन नैपकिन या ब्राउन पेपर के ऊपर में रख लें थोड़ी देर के लिए। इससे क्या होगा, जो उसका एक्स्ट्रा ऑयल होता है या घी होता है वो जो आपने पेपर नैपकिन के ऊपर रखा है तो नैपकिन उसे सोख लेगी और आपकी सेहत का ध्यान रखेगा। अब हम बात करते हैं कि जब हम भोजन पकाने की बात करते हैं तो बहुत से नए आजकल हमारे पास में उपकरण आ गए हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। जैसे अभी तक हम देखते थे कि या तो स्टोव पर या अंगीठी पर खाना बनाया जाता था, उसके बाद में कुकिंग गैस आ गई, एलपीजी आ गई, तो कुकिंग स्टोव आ गया, उससे बहुत लाभ हुआ हमारी महिलाओं को, क्योंकि उनकी सेहत पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है कुकिंग गैस से को यूज़ करने का। उसके बाद में हमने देखा इलेक्ट्रिक अवन आ गया, उससे भी बहुत आराम हो गया, महिलाओं को बहुत तरह की चीज़ें बनाने लगे वो। अब हम देख रहे हैं कई सालों से प्रचलित है, खासकर बड़े शहरों में, हर एक शहर में है, माइक्रोवेव अवन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें डायरेक्ट हीट नहीं लगती है, लेकिन किरणों द्वारा जो है, जो फूड हम अंदर रखते हैं वो पकाया जाता है। तो वो भी बहुत लोग आजकल जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए बहुत सहूलियत हो गई है माइक्रोवेव अवन से। तो इससे ये होता है कि आप जब बहुत कम समय है आपके पास में तो बहुत जल्दी उसके अंदर भोजन पक जाता है। एक और कुकर का आविष्कार किया गया था जिसको हम सौर कुकर कहते हैं या सोलर कुकर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सनलाइट होती है, सूर्य की जो किरणें होती हैं उसमें जो गर्मी होती है उसका हम प्रयोग करते हैं, जिससे भोजन, उसके अंदर जो भोजन रखा होता है वो पक जाता है। तो इसमें देखिए, हींग लकीना फिटकरी, आपका भोजन पक गया, आपका कोई खर्च भी नहीं हुआ, आपने एक बार वो सौर कुकर खरीद लिया, उसको अपने घर पर रखा। हमारे भारतवर्ष में देखिए ये बहुत हमारे लिए फायदेमंद चीज़ है कि साल भर हमें बड़ी अच्छी धूप मिलती है। तो धूप में आपने अपना कुकर रख दिया, उसके अंदर आपने दाल चावल आलू जो भी है डब्बे में बंद करके रख दिया, दोपहर तक वो खाना बन के तैयार हो गया, आपका कोई भी एक पैसा खर्च नहीं हुआ, लेकिन फ्री में आपने सनलाइट का उपयोग किया और खाना बना लिया। इससे क्या हुआ, आपकी अपने पैसों की बचत हुई और पर्यावरण को भी आपने सुरक्षित रखा, है ना, मजे की बात ये। तो और एक चीज़ आज देखने को मिलती है जो बड़े शहरों में है, जिसे इंडक्शन कुकटॉप कहते हैं। ये भी एक टाइप का कुकर है जिसके ऊपर में आप कुकिंग स्टव है, इसमें कोई लौ नहीं होती है, तो ये खाना पकाने के लिए बहुत सेफ़ है। बिजली से चलता है ये और भोजन बहुत जल्दी पका देता है। तो ये तो कुकिंग के मेथड्स की बात हुई। अब बात करते हैं कि जब हम भोजन पकाते हैं तो कुछ हमें जो है ध्यान रखने वाली बातें हैं जो हमें सोचनी चाहिए, जिनके द्वारा हम जो हमारे भोजन में पोषक तत्व हैं उनको, उनका संरक्षण कर सकते हैं, उनको अपने भोजन में नष्ट होने से बचा सकते हैं। तो आइए देखिए ये कौन सी बातें हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जो सब्जी आप बना रहे हैं उसे आप काटने से पहले धो लीजिए। हाँ, मैंने बिल्कुल जो कहा आपने बिल्कुल सही सुना, सब्जी को काटने से पहले धो लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप काटते हैं तो उतने ही सरफेसेस बढ़ जाते हैं और हर सरफेस से उस सब्जी में जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं उनका नाश होता है, वहाँ से वो नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप पहले काटेंगे फिर धोएंगे, उतना ही हैंडल करेंगे तो उतना ही विटामिन और जो मिनरल्स हैं उसका लॉस होगा। तो उससे बचने के लिए आप पहले धो लीजिए। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है, कई सारी हम सब्जियां बनाते हैं जिनको हम छील के बनाते हैं, जैसे आलू है, लौकी है, तुरई है, बहुत सारी सब्जियां हैं जिनको हम छीलते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जब हम छील रहे हैं तो बड़ा पतला सा छिलका निकालें, क्योंकि जो छिलका होता है उसके जस्ट नीचे, उस लेयर के जस्ट नीचे ये विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। जितना मोटा छिलका निकालेंगे उतने ही ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स आपके छिलके के साथ गई कूड़ेदान में, है ना। तो छिलका जब आप निकाल रहे हैं बहुत पतला सा छिलका निकालें, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, जब आप सब्जी काट रहे हैं तो बड़े बड़े टुकड़ों में आप सब्जी काटिए। हाँ जी, थोड़े बड़े टुकड़ों में काटिए, क्योंकि पक तो हो जाएगी, सॉफ्ट तो हो जाएगा, आप उसे खा पाएंगे, लेकिन अगर बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो उतने ही ज़्यादा सर्फेसेस क्रिएट कर रहे हैं आप, जहाँ से मिनरल्स एंड विटामिन्स का लॉस होता है। तो वो, उससे बचने के लिए आप थोड़े बड़े टुकड़ों में काटिए। और उसके बाद क्या करना है, यदि आपको उबालना है, कोई सब्जी उबालनी है, जैसे मान लीजिए आपको आलू आपने बनाए हैं, आलू के चिप्स बनाए हैं, और उसे एक बार आपको उबलते पानी में से निकालना है, तो आपको क्या करना है, पानी पहले उबाल लीजिए और उसमें उबलते हुए पानी में आप जो है अपना खाना डालिए। अगर आप ठंडे पानी में आलू डाल करके फिर उसे आप उबालना शुरू करेंगे तो उसमें जो विटामिन एंड मिनरल लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ध्यान रखें, उबलते हुए पानी में अगर आप खाना डाल रहे हैं, जैसे अंडा भी अगर आपको उबालना है तो उबलते हुए पानी में डालिए, जल्दी पकेगा और जो है उसमें से लॉस भी कुछ नहीं होगा। और पानी का जब आप प्रयोग कर रहे हैं तो जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी डालिए। चावल अगर आप बना रहे हैं तो उतना ही चावल में पानी डालिए जितना कि सोख लेगा। अगर आप ज़्यादा पानी डाल रहे हैं तो आपको वो पानी निकालना पड़ेगा, माड़ बन जाएगा उसका, उसको आपको हटाना पड़ेगा। और फिर उसका क्या करते हैं, हम आमतौर पर उसको फेंक देते हैं। जब फेंक देते हैं तो लीजिए गया, नाली में गया, जितना आप उसमें पोषक तत्व था वो तो आपने फेंक दिया। इससे बचिए, केवल जितना पानी आपका उसमें खप जाए उतना ही पानी आप डालिए। और एक बहुत पते की बात बताओ, आप अपने खाने में खाने वाले सोडे का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। जहाँ आपने खाने वाला सोडा डाला, आपने चने उबालते समय, राजमा उबालते समय, पकौड़ी बनाते समय, मठरी बनाते समय अगर आपने खाने वाला सोडा डाल दिया तो जितने भी उसमें फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं, खासकर विटामिन ए, वो तो बिल्कुल नष्ट हो गया। तो इसलिए खाने वाला सोडा जो है आप बिल्कुल प्रयोग करना बंद कर दीजिए। और जितना आप पानी एक्स्ट्रा किसी चीज़ में अगर डाल भी देते हैं, मान लीजिए कि आलू उबालने में ज़्यादा पानी आपने डाल लिया या चावल आपने जब बनाया तो एक्स्ट्रा पानी है वो माड़ बन गया, इसको आप तरीके सोचिए कि आप किस तरीके से इस अतिरिक्त पानी को और चीज़ें बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे माड़ भी अगर बन जाता है तो उससे आप आटा गूंद सकते हैं, ठीक है, आप उसमें नींबू नमक डाल करके थोड़ा सा हल्के से मिर्च डाल के उसके आप बहुत बढ़िया कोल्ड ड्रिंक बना सकते हैं। इस तरह से आप सोचिए कि आप किस इंटरेस्टिंग तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। और एक पते की बात यह है कि जब भी आप कुछ खाना बनाते हैं, पकाते हैं, तो ढक्कन लगा करके उसको पकाइए। क्योंकि जब आप खुले में पकाते हैं, अगर सब्जी आप कढ़ाई में खुली रख के पकाते हैं, तो जब वो सब्जी हवा के संपर्क में रहती है तो उसके पोषक तत्व नष्ट होते हैं। तो ढक करके पकाइए, अपने पोषक तत्वों को संरक्षित करिए। अब एक बात और हम सोचने वाली ये है कि जो पोषक तत्व आपके खाने में हैं वो तो हैं, वो आपको मिल रहे हैं, और हमने ये भी बात कर ली कि उनको जो है आप संरक्षित कैसे कर सकते हैं, नष्ट होने से कैसे बचा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपने भोजन में इन पौष्टिक तत्वों का संवर्धन कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप अपने खाने का जो है, खाने में पौष्टिक तत्वों का संवर्धन कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आप घर पे करते हैं उनके बारे में सोचिए। जैसे आपके आम तौर पर घर में खिचड़ी बनती है, जब खिचड़ी बनती है तो उसमें आप क्या करते हैं, आप दाल यूज़ करते हैं, चावल यूज़ करते हैं, सब्जियां यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला करके जब आप कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें जैसे चावल और दाल आपने मिला करके बनाया, तो जो कमी चावल में है या जो कमी दाल में है वो दोनों मिल करके पूरक बन जाते हैं। और इस तरह से जो आप भोजन बनाते हैं उसमें आपको दोनों का एक साथ जो है पोषक तत्व मिल जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए, आप फर्मेंटेशन करते हैं, फर्मेंटेड फूड्स कौन से होते हैं, जब आप डोसा बनाते हैं तो उसका जो बैटर होता है जो आप यूज़ करते हैं, पहले आप दाल और चावल मिला करके पीस करके एक रात में रख देते हैं, उससे फर्मेंटेशन होता है, वो फूल जाता है और उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो बढ़ कर निकलते हैं। इस तरह से कौन से पोषक तत्व बढ़ते हैं, जैसे विटामिन सी बढ़ते हैं या बी कॉम्प्लेक्स इसमें तैयार होते हैं और वो आपको भोजन में मिलते हैं। फर्मेंटेशन के और कौन से एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं? जी हाँ, जैसे ढोकला आप बनाते हैं वो भी आप फर्मेंट करके बनाते हैं, या इडली बनाते हैं वो भी आप फर्मेंट करके बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों से जब आप फर्मेंट करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या होते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा जो है वो डाइजेस्टेबल हो जाता है, बहुत ही आराम से ये स्टीम करके बनाया जाता है और ये जो है आपका बन जाता है डाइजेस्टेबल फूड होता है, और उसमें वो बहुत स्पॉन्जी बन जाता है, सॉफ्ट फूड होता है, तो यदि कोई बीमार भी होता है तो उसको आराम से वो खा सकता है। और एक तरीका क्या होता है, जर्मिनेशन होता है या अंकुरण होता है। हम बहुत बार दालों को अंकुरित करके खाते हैं, और या तो आप उसे कच्चा खा सकते हैं, या उसको आप हल्का सा छोंक करके और गला करके खा सकते हैं, या भून करके खा सकते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, जो अंकुरित दालें होती हैं उसको पीस कर आटे में गूंद लेते हैं, या उसको हम बुजुर्गों को जब हम देते हैं तो अलग अलग तरीके से उसको सॉफ्ट बना करके और देते हैं। तो जब आप अंकुरण करते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है, और वो बहुत ज़्यादा डाइजेस्टेबल हो जाता है। और इसके साथ ही आपको विटामिन सी भी इसमें भरपूर मात्रा में मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो देखिए आप अपने घर पर आराम से प्रयोग कर सकते हैं, कि जो आपको पोषक तत्व मिल रहे हैं खाने में वो तो मिल ही रहे हैं, उसका आप लाभ उठाएं, और उसको अगर आप बढ़ा करके जो है अपने किसी तरीके से आप अपने परिवार को परोसना चाहते हैं, तो आप जर्मिनेशन या अंकुरण, फर्मेंटेशन या कॉम्बिनेशन के प्रक्रिया से इन पोषक तत्वों में संवर्धन भी कर सकते हैं। तो हुई ना ये मज़ेदार बात आज की चर्चा में, देखिए अब आप अपने घर में अपने पकाने की विधियों को का मूल्यांकन करिए, और देखिए कि कहाँ पर आप सही हैं, कहाँ पर आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, और अपने आस पड़ोस में भी अगर आप अपने इस ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, तो ये आपके गृह विज्ञान पढ़ने की उपलब्धि होगी।